शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूतारचूडामणिं वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयम् जय जय राधारमण हरि गो जय जय राधारमण हरि गो
Thank you. तीनों का अधिनाश समझ लो है। स्वामी श्री विवेकानंद महाराज के पुस्तकालय में देख रहा था, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप अपने स्वरूप को समझो, आप क्या है, जो अपने कर्मों को नाम अमुक अमुक जाति अमुक अमुक वर्ग मान के बैठे हैं, भ्रांति है। तो उनका जीवन एक ऐसा विलक्षण जीवन जहां धर्म उपासना और ज्ञान तीनों का सामंजस्य, वो एक पवित्र प्रांगण है। श्रद्धेय स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज जो स्वयं बहुत अच्छे वक्ता है और उनकी बड़ी कृपा स्नेह मुझ पर जो यहाँ बैठ करके वो श्रवण करते हैं, ये विषय में विश्वास रखा हुआ है। स्वामी जी की अनुमति से महाराष्ट्र का जो प्रसंग है, महाराष्ट्र जरूर एक सामान्य धरातल के लिए कठिन विषय है, लेकिन आप लोगों ने शायद वो घटना सुनी होगी जब गीता प्रेस गोरखपुर में श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद हो रहा था। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज उस समय दूसरे रूप में थे, पूज्य शांतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में। उस समय गीता प्रेस के किसी विशिष्ट व्यक्ति ने कहा कि महाराष्ट्र के 5 अध्याय अगर भगवत जी से निकाल दिए जाए तो कैसा रहेगा, क्योंकि इसको पढ़ के कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, भ्रांतियां पैदा होती हैं। गुरुदेव ने कहा कि अगर किसी शरीर से प्राण निकाल दिया जाए तो उसकी जो दशा होती है वही दशा भगवत की हो जाएगी अगर महाराष्ट्र के 5 अध्याय से निकाल दिया जाए। भगवत का प्राण है महाराष्ट्र, ये जरूर है, ये पराकाष्ठा की साधना का विषय है। हमारे भक्ति मार्ग में 5 भाव जो माने गए हैं, शांत भाव, दास भाव, सख्त भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव, उसमें से ये मधुर भाव अंतिम भाव, ये मधुर भाव की लीला महाराष्ट्र की लीला। तो उसमें हमारे संत कहते हैं जीवन में जब तक भगवान के प्रति कोई एक संबंध नहीं जुड़ा होगा, दास भाव से जुड़ा हो, सख्य भाव से जुड़ा हो, वत्सल भाव से जुड़ा हो, माने भगवान को हम अपना स्वामी मानते हो, भगवान को अपना मित्र मानते हो, या भगवान को अपना माता पिता मानते हो, या भगवान को अपना पुत्र मानते हो, वत्सल में दोनों आते हैं। एक अपना तो उनके साथ जब तक नहीं हुआ होगा तब तक इन लीलाओं का मधुर भाव का ठीक ठीक अर्थ समझाने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो इस तरह 5वीं कक्षा के बालक को एमए क्रास का अगर कोर्स बताया जाए तो कितना भी प्रयास किया जाए लेकिन उनको समझ में आना डिफिकल्ट काम, तो क्या किया जाए। तो बोले कि इसलिए महाराज के समापन में 2 बात लिखी हुई है, समझ में आ जावे तो समझ लो श्री राधा रानी की कृपा हो गई, और नहीं आवे तो राधा रानी से प्रार्थना करो कि हमारे जीवन को भी इतना उठावे कि हमको भी श्री लीला का आनंद मिल सके, संदेह न करके श्रद्धा करो। हाँ, ये लिखा है श्रद्धा मिलो महाराज का अंतिम श्लोक, श्रद्धा पूर्वक जो इसका वर्णन करता है या श्रवण करता है। तो श्रद्धा को लगा देंगे, श्रद्धा का अभिप्राय यह होता है विश्वास तब होता है जब कोई बात समझ में आ जाती है, और बिना समझे अपने किसी महाराज विशिष्ट व्यक्ति के बात पे भरोसा कर लेना समझ में ना आने के अलावा भी, उसका नाम है श्रद्धा। हमारे गुरुदेव ने कहा है तो सच ही होगा, हमारा विस्तार आएगा तो हमारे समझ में आ जाएगा। श्रद्धा हमारे जीवन की साधना को आगे बढ़ाती, तो श्रद्धा मिता, श्रद्धा में सत को धारण करने की जो शक्ति, श्रद्धा, तो श्रद्धा जो सत परमात्मा को धारण करने की भावना, हमारे समझ में कोई बात नहीं आ रही है, स्थापित नहीं है, तो बात सही नहीं है। यह हमको जो दिखाई देता है आंख से वो सब सही है, यह हमको जो बुद्धि में समझ में आता है वो सही है, ये भी आवश्यक नहीं है। आंख से तो आकाश में नीलिमा में दिखाई देती, नीलिमा तो है, और बुद्धि से आप अपने जीवन में कितने लोगों को कभी सही समझा होगा और कभी उन्हीं को गलत समझा होगा। तो जब आपकी अपनी बुद्धि का निर्णय एक व्यक्ति के प्रति भी बदलता रहता है, तो अपनी बुद्धि पे इतना भरोसा हम कैसे कर सकते हैं कि शास्त्र और गुरु की बात के अलग अपनी बुद्धि का निर्णय ले। तो वो प्रश्न में आ जाए महाराज को समझने के लिए, अगर इसका रस लेना है तो रस तो वही ले पाएगा जो देहाती अवस्था में होगा, ये मधु रस की लीला है, और मधु रस का प्रारंभ होता है देहाती अवस्था से। इस सूक्ष्म शरीर से अध्यास जब टूट जाता है, सूक्ष्म शरीर में रहता है, देहाती का अध्यास केवल इस सूक्ष्म शरीर से है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की निवृत्ति तो ब्रह्म विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा होती है। तो इस सूक्ष्म शरीर से अध्यास जब छूट जाता है तब मधुर भाव की साधना में प्रवेश होता है। तो दो बात यहाँ ध्यान रखनी है, पहली बात तो पांच भावों में से किसी एक भाव से अगर हमारा जीवन ईश्वर के साथ जुड़ा है, और जुड़ा है मतलब अनुभव हो रहा है, क्या ठाकुर हमको बालक के रूप में अनुभव होते हैं, क्या ठाकुर जब हमको माता पिता के रूप में अनुभव होते हैं, क्या मित्र के रूप में अनुभव होते हैं, अगर होते हैं, जैसे आपके बच्चे की कोई गलत चीज में जिससे आपका प्रेम होगा बच्चे से, उसकी गलत चीज भी आपको गलत नहीं लगती, एक प्रतिशत हम मान भी लें कि वो मर्यादा से थोड़ा हट के लीला है, लेकिन जब श्री कृष्ण से प्रेम होगा तो वो लीलाएं भी आपको आनंद देगी, वो गलत दिखाई नहीं देगी। एक बात तो ये, तो अगर आपका भाव जुड़ा है तो समझ में आ जाएगी, और अगर आप वास्तव में इस स्थूल शरीर से ऊपर उठ गए तब तो रस आएगा। ये वो रस लीला है जो द्वापर में हुई थी, केवल वो नहीं है जो आज भी हो रही, ये वो रस लीला है, ये वो महाराज नरसिंह मेहता जो है 400-500 वर्ष पहले हुए, उन्होंने भगवान शिव की उपासना की और भगवान शिव प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनको दर्शन दिए जूनागढ़ में, और उन्होंने पूछा भगवान शंकर ने क्या चाहते हो, नरसिंह मेहता विलक्षण भक्त थे, मुचकुंद जी के अवतार थे, वर्णन मिलता है द्वापर में जो मुचकुंद थे वही नरसिंह मेहता हुए। नरसिंह जी ने कहा प्रभु आपको जो सबसे अच्छा लगता हो वो हमको दे दीजिए, जानते हो भगवान शंकर ने क्या दिया, भगवान शंकर ने कलिकाल में नरसिंह मेहता को महाराज की दिव्य लीला का दर्शन करवाया, दिव्य वस्त्र, ये महाराज लीला है, 400-500 वर्ष पहले की घटना है। तो महाराज उस समय हुआ था वो घटनाएं सुनाई जा रही, ऐसा नहीं है हमारा इसका काल भी अगर वहां पर पहुंच जाए तो आज भी हमको महाराज की लीला का दर्शन और उसका आनंद हो सकता है। वहीं पर जो नरसिंह मेहता देख रहे थे महाराज की लीला, हाथ में मशाल लिए हुए थे, और किशोरी जी ने ठाकुर जी से कहा कि मनुष्य लोक का व्यक्ति कैसे आ गया इस लीला में, तो अधिकारी नहीं इसके देखने का। भगवान ने समझाया भोले बाबा ने क्या है, भोले बाबा तो स्वयं महाराज लीला का दर्शन करते, और वो नरसिंह मेहता इतना तन्मय हो गए थे रासलीला देखते देखते कि हाथ में जो मशाल लिए हुए थे और मशाल जलते जलते खत्म हो गई, उनका हाथ जलने लग गया, फिर भी उनको भान नहीं हुआ, उन्हीं का देखते रहे, तब किशोरी जी वहां से दौड़ी और उनका हाथ ठीक किया, वहां से भी पता लगता है देहाती के लिए हाथ जल गया था उनका, किशोरी जी ने ठीक किया। तो ये तो कलयुग की घटना, ये तो द्वापर की घटना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इस लीला को समझने वाले या आनंद लेने वाले नहीं है, ऐसा नहीं है, कम है, कम है। आज भी घर में अच्छे से संत है, आपके पास अगर समय है सुविधा है तो आप जाके खोजो, अभी मेरे का किसी सज्जन ने बताया एसपी पुलिस का एसपी है पूरे बिहार का वो रिजाइन करके वृंदावन आ गया तीन चार साल से ऐसे फटे पुराने कपड़े पहने और जमुना जी के किनारे घूमते रहते टटिया स्थान पे कुटिया बनाई हुई है वहां कभी कभी रहते हैं और कोई कृष्ण नाम बोले तो उनकी आंखों से जल जरा सुपात हो जाता है। पुलिस विभाग का व्यक्ति वो भी एसपी जो रहा है डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज तो ये क्या आज है वो व्यक्ति अभी है वृंदावन कृष्ण नाम लेते ही आंखों से जल जरा सुपात होने लग जाता है। ये अवस्था जिस दिन हमारे जीवन में आ जाएगी तो महाराष्ट्र जैसा दस ही कहेंगे महाराष्ट्र की लीला जैसा दर्शी ही कहानी जहां दो देह एक प्राण जहां दो वास्तव में शक्ति एक है लेकिन अनेक रूप होकर के आपस में नृत्य कर रही है। जैसे समुद्र जब तरंगायित होता है तो उसकी लहरों का आनंद आता है लेकिन समुद्र एक ही होता है तरंगे अनेक दिखाई देती वास्तव में उस समय भी और जल अनेक ही होता है। ऐसे ही महाराष्ट्र की लीला में श्री कृष्ण है सागर और गोपियां हैं सारी तरंगे अगर वापस में नृत्य कर रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है लेकिन उसका आनंद वही ले सकेगा जो वास्तव में जल को पहचानता होगा जो जल और तरंग का भेद मान करके चलेगा वो उसका आनंद नहीं ले सकता है। ये महाराष्ट्र हमारे गुरुदेव कहते थे श्री राधा कृष्ण का नृत्य माने बोले सागर में एक तरंग उधर से आती है हवा के झोंकों में एक इधर से जाती है दोनों आपस में मिल करके एक हो जाती है फिर एक तरंग उधर को चले जाती है उधर को चले जाती है यही दो दिन एक प्राण एक तरंग इधर से आई कि इधर से आई मिल गई वास्तव में ना वो दो थे और ना वो दो कभी अलग हुए लीला के लिए दो रूपों में प्रकट हुए वास्तव में एक थे इसलिए महाराष्ट्र लीला में दोष का प्रवेश इसी में नहीं है। दोष का प्रवेश होता है द्वैत में दोष का प्रवेश होता है दो में जहां एक परब्रह्म परमात्मा ही रसानुभूति को प्रकट करने के लिए अनेक रूप में प्रकट हो गया हो वहां दोष का प्रवेश होगा कैसे वो महाराष्ट्र की लीला है वो लीला है। लेकिन फिर मैं कहूंगा इस लीला के दो ही पक्ष है अगर आप भगवान से जुड़े हैं जरा भी प्रेम है ठाकुर के साथ तो रस लेना और कहीं अगर बात समझ में ना आवे तो जिज्ञासा करना संदेह मत करना किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करना किशोरी जी हमारे भी जीवन में प्रेम दो जैसे ठाकुर की इस लीला का आनंद ले सके। अरे जो प्रार्थना ब्रह्मा ने की क्या ब्रह्मा से कोई ज्यादा बुद्धिमान आज का व्यक्ति है क्या ब्रह्मा हमारे शास्त्र में बुद्धि के देवता ब्रह्मा और वो ब्रह्मा ने वृंदावन में प्रार्थना की है तब भूल भाग में जब मैं पिटक गया ब्रह्मा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते ठाकुर अगर मेरा अगला जन्म हो तो मेरे को ब्रह्मा मत बनाना ब्रह्मा करे जो सृष्टि का विधाता है सारी दुनिया का निर्माण करता है हम लोग एक कोटि बना लेते हैं एक बड़े कोई संस्था बना लेते हैं तो थोड़ा प्राउड फील करते हैं हमने इतनी बड़ी संस्था तैयार की कोटि बनाई अरे ब्रह्मा जिसने ब्रह्मांड को बनाया क्या है कृष्ण प्रेम वहां से पता लगता है तो ब्रह्मा कहता है आपने जन्म में अगर मेरा जन्म हो ठाकुर मेरे को ब्रह्मा मत बनाना क्या बनाना इस वृंदावन में जन्म दे देना वृंदावन में जन्म ब्रह्मा क्या गोपी बनना चाहते हो ग्वाल बाल बनना चाहते हो ब्रह्मा ने कहा नहीं प्रभु इतना भाग्य मेरा नहीं आप समझे रामलीला का स्तर ब्रह्मा कहता है इतना भाग मेरा नहीं है कि मैं गोपी बन सकूं या ग्वाल बाल बन सकूं फिर बोले इस ब्रज का कोई वृक्ष बना देना लता बना देना इन गोपियों की चरणों की धूलि उड़ करके मेरे शरीर में पड़ जाए तो कृष्ण प्रेम मेरे जीवन में प्रकट हो जाएगा और मेरा जीवन का दर्श तो ये जो रस है हमारा आपका जीवन थोड़ा भी अगर श्री कृष्ण से जुड़ेगा कृष्ण प्रेम में थोड़ा जुड़ा हुआ होगा तो ही हम समझ सकेंगे नहीं तो शंकाएं तो जब सुखदेव ने भागवत कही थी तभी से प्रारंभ हो गई थी। सुखदेव ने पहले भागवत परीक्षित को सुनाई थी, जहां से भागवत का क्रम चला वहीं पर एक प्रश्न हो गया था कि श्री कृष्ण ने ऐसी लीला क्यों की भागवत में। तो वही समस्या वही इस पर का शायद डेढ़ दो बार सुबह होंगे पत्रा जी हमारे बैठे हैं, इनको मालूम होगा किसी जज ने डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट के जज, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के यह दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक डिसीजन दिया था किसी एक समस्या को लेके। बोले जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह के रह रहे थे सामान्य व्यक्ति भी रह सकता है, इतना कष्ट हुआ आपको सुन करके। राधा कृष्ण क्या थे, उनका जीवन क्या था, ये बेवकूफ लोग समझते नहीं। जब उन्हें अलग डिपार्टमेंट है, वो एजुकेशन अलग है, कृष्ण प्रेम अलग है, जहां उद्धव जैसा पंडित का ज्ञान भूल में मिल गया अपने गोपियों के सामने, ये जज का ज्ञान क्या है उसके साथ। उद्धव जैसा जो बृहस्पति का शिष्य है, उद्धव शिष्य बृहस्पति साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव, जहां गोपियों के चरणों की धूल अपने माथे पे लगाते, जहां सुखदेव दिखाया गोपियों के लिए लिखे सुखदेव, वो सुखदेव जो अपने माता पिता के यहाँ जन्म लेकर के ही निकल पड़े थे, वो सुखदेव जिनके शरीर पे कपड़ा भी नहीं था, वो ब्रह्मनिष्ठ, वो सुखदेव जी कहते बंदे नंदर ब्रजस्त्री नाम पारेणु अधीक्षाशा। सुखदेव जी कहते हैं मैं तो ब्रज के गोपियों के चरणों की धूल की बार बार वंदना करता हूँ जिससे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। ईश्वर ब्रह्मा जी जहाँ वर्णन करते जहाँ उद्धव जी प्रार्थना करते हैं, जहाँ सुखदेव जी के विचार, ये वो महाराष्ट्र लीला है। अवश्य इस पर इसका जरूर विचार है, लेकिन इसके जैसा रस भी कहीं नहीं। तो फिर मैं कहूंगा इस रास लीला के लिए आप रस लेवें, और एक ऐसा ये प्रांगण है जिस महापुरुष के नाम से प्रांगणानुसारी आराधना प्रत्यक्ष करके दिखा दिए, हमको वही आदर्श जीवन में रखना। आदर्श रहेगा तो एक न एक दिन जीवन वही पहुंचेगा। तो श्रद्धा रखें, अगर समझ में आवे तो रस लेवे, और जो बात समझ में ना आवे तो जिज्ञासा करें, श्रद्धा करें, कटाक्ष नहीं करें। महाराज ये मूल प्रश्न महाराष्ट्र एक बार व्यवहारिक दृष्टि से अगर विचार करें, भगवान कृष्ण ने जब महाराष्ट्र लीला की, आप लोगों को मालूम होगा उनकी आयु क्या थी, अगर उनको मान रूप में भी माने तो यद्यप भगवान को पर मानवीय नियम लागू नहीं होते, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब महाराष्ट्र लीला की उनकी आयु थी 8.5 वर्ष, 8.5 वर्ष, और गोपियों की आयु थी 6 से 7 वर्ष। अगर 6 से 7 वर्ष की कोई बालिकाएं और 8.5 वर्ष का बालक आपस में कोई नृत्य भी करते हैं तो क्या वहां कोई दोष की संभावना होती है? आज भी नहीं होती, कलिकाल में कलयुग में भी नहीं होती। वो तो द्वापर था जहां कृष्ण भगवान अवतार रूप में थे, कितने इससे समाधान, व्यवहारिक पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है, भक्ति पक्ष है। और तीसरी बात, ये उन्हीं गोपियों के साथ महाराष्ट्र जिला हुई है जिन गोपियों को श्री कृष्ण ने पहले से अपनाया था। क्या भाग्य था उनको, हम श्री कृष्ण को बुलाते हा नाथ हे कृष्ण हे गोविंद, एक बार दर्शन हो जाए हम लोग प्रयास करते हैं, और वो धन्य गोपियां जिनको श्री कृष्ण बुलाते थे, ये वो गोपियां गौरी संप्रदाय के महापुरुष जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बोले जिन गोपियों के बिना धोए हुए कपड़े श्री कृष्ण कंधे पे लेके पेड़ पे चढ़े, क्या वो संसारी गोपियां हो सकती है? जो श्री कृष्ण बड़े बड़े संतों के हृदय में ध्यान के माध्यम से कमल के आसन पर भी अभी नहीं आते, और बिना धोए हुए कपड़े गोपियों के अपने कंधे पे रख ले और ठाको, क्या वो संसारी गोपियां हो सकती है? क्या सामान्य गोपियां हो सकती है? ये वो गोपियां जिनके साथ रास लीला की, विचार करना होगा राष्ट्रीला करने वाला कौन था, साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण राष्ट्रीला की किसके साथ, वो गोपियां और दिव्य जीवन जिन गोपियों को श्री कृष्ण ने गोपी के माध्यम से आह्वान किया। आप भागवत सुनते हैं, भागवत कथा बहुत होती, ध्यान से अगर भागवत सुने या पढ़े तो वेणु गीत में भी वेणु वादन हुआ है और महाराज के पुरुष संध्या में भी वेणु वादन हुआ है। वेणु गीत में जब वेणु वादन हुआ है तो श्री कृष्ण लगभग 6 वर्ष के, महाराज के समय लगभग 8.5 वर्ष के। वेणु गीत में वेणु वादन हुआ है दिन के समय, महाराज के लीला में वेणु वादन हुआ है रात्रि के प्रवेश संध्या के समय। अगर गोपियों को मर्यादा छोड़ के भागना ही होता तो वेणु गीत जब हुआ था उसी समय घर परिवार छोड़ के चले जाती ना, वो तो दिन का समय था और सुविधा थी रात्रि के समय की अपेक्षा व्यवहारिक दृष्टि से एक भी गोपी नहीं गई। लेकिन श्री कृष्ण का वेणु वादन ऐसा था कि गोपियां तो शरीर तो नहीं गया लेकिन चित्त चला गया। श्री कृष्ण का उद्देश्य वही था, वेणु वादन का उद्देश्य वही था। वहीं पर जो गोस्वामी जी कहते क्या इस संसार में ऐसा कोई भक्त या संसारी है जिसका चित्त श्री कृष्ण लेना चाहे और बचा के रख ले। श्री कृष्ण जिसका चित्त लेना चाहे एक बार तो बचा के नहीं रख सकता और दूसरी बार श्री कृष्ण चित्त भी किसका लेते हैं, माखन किसका खाते हैं, गोपियों का ना कि हमारा आपका। हम और बड़े बड़े घरों में उद्योगपतियों के घरों में सोने चांदी के बर्तनों में ठाकुर को भोग लगाते, पर्दा लगाते, घंटी बजाते, प्रार्थना करते ठाकुर जी भोग लगाओ, बुरा मत मानना, प्रसाद पूरा का पूरा वापस आ जाता है। एक ये पक्ष है। दूसरा पक्ष होगा गोपियां डंडा लेके खड़ी रहती थी, मिट्टी के बर्तन में मक्खन होता था, ड्यूटी लेती थी आएगा तो मारेंगे और उसके बाद भी ठाकुर माखन चुरा के खा जाता था। क्या वो माखन का भूखा था या गोपियों के प्रेम का भूखा था? अगर माखन से नहीं खाता ना, हम तो सोने चांदी के बर्तन में उसको प्रार्थना करके रखते, आज क्यों नहीं खाते? ठीक है, भाव दृष्टि से मानना चाहिए कि जरूर स्वीकार करते, लेकिन कटु शब्द तो यही, गोपियों का माखन तो छीन के खा जाते थे, बाली खाने के बाद खा जाते थे, खदेड़ने के बाद खा जाते थे। क्यों? माखन के भूखे नहीं थे। गोपियों का चित्त इतना सुंदर था, हमारे गुरुदेव को जो स्वामी खन्नानंद जी महाराज कहते थे, बोले अपना चित्त भी ऐसा बनाओ ना कि भगवान का भी मन हो जाए कि इसके चित्त की चोरी करना। ऐसा चित्त बना, ऐसा चित्त था गोपियों का। ये वो गोपियां थी, भगवान ने वेणु वादन किया तो उनका चित्त चला गया कृष्ण के पास, कृष्ण को पाना है। आह्वान कृष्ण का गुरु में आप देखना, आह्वान कृष्ण का गोपियों के हृदय में तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हो गई कृष्ण को पाना है। लेकिन एक भी गोपी घर परिवार छोड़ के नहीं जाती, तो गोपियां कात्यायनी उपासना प्रारंभ कर दी। धर्म की दृष्टि आप देखिए, कात्यायनी मैया की एक महीना उपासना के वृंदावन में आज भी वो कात्यायनी जी का मंदिर बना हुआ है, सिद्ध स्थान। एक महीना उपासना की और गोपियों के एक महीने की उपासना में प्रार्थना क्या थी, कितनी सरल, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गो पुरुषोत्तम देवी पतिं मे गुरु ते मना ते नमः। हे कात्यायनी मैया, आप सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ करने में समर्थ है, हम आपकी पूजा करती है। एक ही वरदान चाहिए, क्या? नंद बाबा का जो छोरा है ना, नंद बाबा को जो लाला है ना, ये हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए, ये वरदान दे दो। अगर जानकी जी भगवान श्री राम को पाने के लिए गौरी की उपासना करती और गौरी माँ प्रसन्न होकर उनको वरदान देती है, मन जाग राखियो मिलन सोबर सहज सुंदर सावन, तो अगर जानकी जी जगत के अधिष्ठात्री अपने प्रभु को पाने के लिए गौरी की उपासना करती है और गौरी माँ के आशीर्वाद से श्री राम की प्राप्ति होती है और यहाँ कात्यायनी की उपासना गोपियां करती है, अंतिम दिन था साधना का, एक महीने का अनुष्ठान था, शायद कात्यायनी मैया आने ही वाले थे क्योंकि पूजा के बाद अनुष्ठान पूरा होता है, लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं देखो शायद जानकी जी से भी ज्यादा सफल अनुष्ठान था, क्यों अंतिम दिन का तो अनुष्ठान हुआ ही नहीं ना, पहले ही भगवान कृष्ण आ गए कात्यायनी जी के आने के पहले पहले आ गए और कपड़े उठाकर पेड़ में चढ़ गए। चिरहंसी का जिसको आप बोलते हैं, जिसको तरह तरह की शंकाएं पैदा की जाती है, ये प्रेम की पराकाष्ठा थी। कपड़े उठा के चढ़ गए तो हमारे गुरु जी कहते थे इससे सफलतम अनुष्ठान क्या होगा, कात्यायनी की जगह जिसको मांगने वाली थी स्वयं आ गए और कात्यायनी जी ने स्वयं वरदान दिया गोपियों, आगे आने वाले समय में मैं तुम्हारे साथ महाराज करूंगा और तुम्हारे संकल्प को पूर्ण करूंगा। अगर वो आशीर्वाद देते हैं तुम्हारे संकल्प को पूर्ण करूंगा, तो संकल्प क्या था, भगवान कृष्ण हमको पति के रूप में मिले। अब यहाँ पर आप देखें ये सारी बातें भागवत में लिखी हुई, ये कोई अलग से किसी ग्रंथ से नहीं कह रहे, सारी बातें भागवत में। जिन गोपियों ने आराधना की उन गोपियों को भगवान कृष्ण ने प्रकट होकर वरदान दिया, मैं तुम्हारे बात को पूरा करूंगा, मैंने पति के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। अवश्य बात अगर उन्हीं गोपियों को शरद पूर्णिमा की संध्या के समय बांसुरी बजाते श्री कृष्ण बुलाते हैं तो उसमें धर्म है या अधर्म है, क्या है धर्म है, उसमें कहां से अधर्म प्रवेश कर गया। आजकल जो लोग कहते हैं कि प्रेम में नियम नहीं रहता, प्रेम में धर्म की जरूरत है, उस बात को महापुरुष ना नहीं मानते। महापुरुष कहते हैं जिसका जीवन धर्मयुक्त होगा उसी के जीवन में भक्ति आए और जिसका जीवन भक्ति युक्त होगा उसी के जीवन में ज्ञान आए, नियम तो वहीं से प्राप्त होती है। मैं तो कहता हूं कि गोपियों जैसा कोई धर्मनिष्ठ भी तो आप दिखा दो, और महाराज के बाद भी गोपियां फिर अपने अपने घरों में रहती है, श्री कृष्ण को उजागर के लिए जाते हैं, प्रातः काल दर्शन होता है, फिर जब लौट के आते हैं तो सायंकाल दर्शन होता है। कभी भी एक भी गोपी श्री कृष्ण के साथ तो नहीं गई गोचारण के लिए कि आपने हमको वरदान दिया है तो हम आपने स्वीकार कर लिया है तो हम आपके साथ जा सकते हैं। क्या धर्मनिष्ठा थी, क्या मर्यादा थी। लेकिन उसके बाद भी प्रश्न वही आ जाता है, अगर हमारा स्तर वहां तक नहीं पहुंचा है तो सब कहने के बाद भी हमको समझ में नहीं आएगा। ब्रज के भक्त की पंक्ति है, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ नहीं सके। कहते जो रस की लीला है भगवान की, उस स्तर पर जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक इस लीला को नहीं समझ सकेंगे। तो कोई स्तर है, इसलिए पहले ब्रज के जो संत होते थे प्रायः इन लीलाओं को ब्रज के बाद बहुत कम सुनाते थे, कोई श्रोता कोई सुनाते थे। हमारे सदगुरु स्वामी शांतानंद जी महाराज परम का बोले इस लीला को लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं, तो हम तो चाहेंगे आप इसी पर हो गए। चंद्र महाराज जी कह रहे थे बहुत कठिन प्रसंग महाराज आपने लिया है, उन्हें कहा जरूर कठिन तो है लेकिन फिर भी मैं व्यक्तिगत अगर करूं तो मेरे को भी इसमें जितना आनंद आता है, आप ले तो प्रभु कृपा, नहीं ले तो प्रभु इच्छा, मैं स्वयं इसमें रस लेता हूं। ऐसा प्रसन्न ये देहाती प्रसन्न है, इस स्थूल शरीर का भान इसमें खो जाता है तब इसका रस आता है, इस स्थूल शरीर का अध्यास खो जाता है तब इसका आनंद आता है। ये ऐसी लीला है, तो ये इसकी भूमिका थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं समय के अंदर। महाराज की भगवान सारी भूमिका तैयार की, महाराज की क्या क्या काले मर्दन करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो सामान्य बालक नहीं है भगवान। काले मर्दन किया जब 6 वर्ष के, तो एक फण के नाग पर 5 घंटे कम से कम एक बालक नृत्य करता रहा, वो मनुष्य बालक हो सकता है भगवान हो सकता है। नाग के सिर पर नृत्य करना वो भी 5 घंटा कम से कम 5 घंटे तो मिनिमम लगता है, या तो नाग के छिपकर निकला हो तो खत्म हो जाती है, सांप निकला हो तो सांप बैक पेन नेक पेन सारे खत्म हो जाएगा, ऐसा बाकी है। तो वो काले रंग के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि भगवान, गिरिराज उठाने के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि भगवान। 7 वर्ष की अवस्था में 21 किलोमीटर के पहाड़ को एक उंगली पे कौन उठा सकता है? क्या मनुष्य कौन उठा सकता है? वो भी 7 दिन तक लगातार दिन और रात वो भगवान ईश्वर कर दिया, तो भगवान कृष्ण जानते थे। आगे आने वाले जो जनरेशन है ईष्ट लीला को लेकर के क्वेश्चन मार्क लगाई, इतना बहुत व्यवस्थित करके सारी महाराज लीला की घोषणा की, काली नवन लीला, गिरिराज लीला, वेणुगीत लीला, भगवान को बुलाया। अरे भगवान की मर्जी है उन्होंने किसका चुनाव किया। और आप जानते भागवत में सुखदेव जी और गोपियों को एक स्तर का दिखाया गया, आप कल्पना कर सकते हैं। सुखदेव जी को लेकर तो किसी को शंका नहीं होती, क्योंकि उनका जीवन अंदर से भी वैसा है, बाहर की हड्डी भी वैसी, लेकिन गोपियों को देख के होती है महाराज। लेकिन आप जानते सुखदेव जी ने भी यही बात राजा परीक्षित से कही, परिनिष्ठित हो विनय गुरु ने उत्तम श्लोक ने लिया ग्रहित चेता राजर्षि आख्यान में ग्रहित हुआ। किसी ने कहा सुखदेव जी महाराज इतने विलक्ष थे, फिर इतनी बड़ी भागवत पढ़े कैसे और सुनाया कैसे? विरक्त महात्मा ज्यादा नहीं पढ़ते तो भजन करते, हमको क्या करना पड़ा? सुखदेव जी ने गोविंदवार परीक्षित ने महाराज आपने साधन कैसे किया? बोले राजन मैं तो नहीं करना चाहता था, मैं तो भाग गया था, लेकिन एक दिन मैं जंगल में घूम रहा था, व्यास जी के पढ़ाए हुए कुछ विद्यार्थी भागवत के श्लोकों का पाठ कर रहे थे, और वो श्लोक थे बड़ा पीड़म नटवर मकुर कर्णयोग कर्णिका, भगवान के सौंदर्य का श्लोक। दूसरा श्लोक था उनके कृपालुता का, अहो वकी स्तन काल कूटन पूर्ण उधार का श्लोक। शुद्ध हृदय सुखदेव महाराज जब इन श्लोकों को सुने तो हृदय समान हो गया, मन एकाग्र हो गया, आनंद आने लग गया। सुखदेव जी ने विद्यार्थियों से कहा और सुनो और सुना, जिसके हृदय में कोई कामना शेष नहीं वह भगवान के सुंदर श्लोक सुन के था, जो ब्रह्माकार मन था वो कृष्णाकार होने लग गया। और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, जितने याद थे सुना दिया। फिर सुखदेव जी ने कहा और सुनाओ, बोले अब नहीं आते। बोले आपको किसने सिखाया उसके पास ले चलो। तब वो विद्यार्थी सुखदेव जी को महर्षि व्यास के पास ले आए, इन्होंने सिखाया है आप इन्हीं से और सुन सकते हैं। तब सुखदेव जी महाराज बड़ा शेर तो मेरे पिताजी जिनको छोड़ के मैं भाग गया था, पिताजी के बुलाने से नहीं आए, श्री कृष्ण के प्रेम से लौट करके आए। फिर उन्होंने व्यास जी से कहा हमको कृष्ण कथा सुनाओ। तो राजा परीक्षित को कहा राजन मैंने चित्त कृष्ण को दिया नहीं है, कृष्ण ने मेरे चित्त को छीन लिया। ये सुखदेव जी की टिप्पणी मैंने नहीं दी, परमा छीन लिया। तो जो टिप्पणी सुखदेव जी की है वही टिप्पणी गोपियों की है। और गोपी जब समझाने जाते हैं कृष्ण जब मथुरा चले गए थे वृंदावन से, गोपियां वियोग में बड़ी पीड़ित थी, उद्धव जी समझाने आए। और उद्धव जी ने जब सब देखा तो उन्होंने एक समाधान दिया कि गोपियों थोड़ा श्री कृष्ण को भूल जाओ तो थोड़ा शांति मिलेगी, क्योंकि दिन भर याद करते हो तो दुख होता है। गोपियों ने कहा उद्धव याद करने का भुलाने का जो यंत्र है ना वो श्री कृष्ण जी है। अब जिसे याद किया जाता भुलाया जाता वो मन और बुद्धि मेरी हमारे पास नहीं है, हम कैसे भुलाएं और कैसे दूसरे को याद करें ये हमारे हाथ की बात नहीं। गत्यालित गावर में श्लोक है, गत्यालित योगावर हास लीला लोग नहीं माध्या क्रिया हित दिया कथम तम विस्मरा है। गोपियां कहती उद्धव उसने टेढ़ी टेढ़ी चाल से, मधुर मुस्कान से, टेढ़ी नजर से और सुंदर मीठे वार्तालाप से हमारे मन बुद्धि का हरण कर लिया, उद्धव हम कैसे उनको भुलाएं और दूसरे को कैसे याद करें। तो जो स्थिति सुखदेव जी के वर्णन है, जिन सुखदेव जी को हम शंकराचार्य की परंपरा के आदि गुरु के रूप में मानते हैं, गौड़पाद गोविंदपाद भगवतपाद, वहीं से हमारा शंकराचार्य की परंपरा प्रारंभ हुई है। वो सुखदेव जी, वो सुखदेव जी की जो अनुभूति है, जो अवस्था है, वही अवस्था ब्रज की गोपियों की है। वो गोपियां तो रास कौन कर रहा है ये समझना होगा, और रास किसके साथ हो रहा है ये समझना होगा। सामान्य जीवों का प्रवेश नहीं है रास में। भगवान शंकर का जब मन हुआ कि हमको भी रास लीला में जाना, इतनी सुंदर लीला गोपियों ने बोल दिया, यहाँ एक ही पुरुष है श्री कृष्ण, बाकी सब गोपियां हैं। और किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। शंकर जी बोले अगर रास लीला में जाने के लिए मेरे को गोपी बनना पड़े तो मैं गोपी बन जाऊंगा, गोपी बन के प्रवेश किए शंकर, ये वो रास लीला। हर भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो शीत प्रतीक है, भगवान जब गोपी बने जब मैं कहना है गोपेश्वर महादेव आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे, भगवान जब रास लीला में गोपी बन गए तो भगवान शंकर रास लीला का आनंद लेने के लिए कितने प्रमाण है भगवत में। ये वही भगवान शंकर है जिन्होंने तीसरा नेत्र खोला था तो काम में भ्रष्ट हो गया था, और भगवान शंकर जिस लीला में गोपी बन के नाच रहे हैं वो रास लीला में क्या कामना का प्रवेश संभव है, अनंत प्रेम का रस है, अनंत प्रेम दिव्य प्रेम का रस है, ये दिव्य भूमि की लीला है, ये दिव्य राज्य की लीला है, ये अंतरंग लीला है, ये सामान्य लीला नहीं है। तो महाराज ये सारी भूमिकाएं बनाने के बाद सुखदेव जी महाराज रासलीला का वर्णन प्रारंभ करते हैं। ये सारी भूमिका बनाने के बाद पहले श्लोक में ही सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदल्लिका वीक्षरन्तं मनश्चक्रे यो मायापाश्रितः। भगवान भी मनश्चक्रे भगवान भी संकल्प करते हैं क्या, गोपियों को वरदान देने में लगभग 2 वर्ष बीत गए, प्रतिदिन गोपियों से मिलना होता था लेकिन किसी गोपी ने भगवान से नहीं पूछा था आपने कात्यायनी उपासना के समय जो वरदान दिया था कि आगे मैं तुम्हारे साथ महानाश करूंगा वो कब कर लिए, क्या समर्पण था, प्रेम और कामना में यही भेद हमारे गुरुदेव का केवल बाल बराबर फर्क है, इससे समझना कठिन होता, क्या फर्क है, बोले जहां प्रेम होता है प्रेमी अपने प्रियतम को सुखी करके सुखी होता है और जहां कामना होती है वहां प्रेमी अपने को सुखी करके सुखी होता है, बस वही फर्क है। संसार में आज जो लोग कहते हैं ना प्रेम प्रेम प्रेम, प्रेम शब्द को दूषित करते हैं, प्रेम नहीं संसार, संसार में स्वार्थ है कामना है, अरे प्रेम में झगड़े क्यों हो रहे, अगर प्रेम होता प्रेम में झगड़े नहीं होते, प्रेम में विवाद नहीं होता, प्रेम में तलाक नहीं होता, प्रेम में विवाह नहीं होता, उसका नाम प्रेम, तब सुख सुखित का नाम प्रेम है, जो आराध्य के सुख में सुखी रहे। आप कल्पना करें 2 वर्ष पहले जिनको वरदान मिल चुका है कि तुम्हारे साथ महाराष्ट्र होगा, उन गोपियों से रोज मिलना होता है श्री कृष्ण का प्रातः और सायंकाल, लेकिन एक भी गोपी ने एक भी दिन नहीं पूछा आपने जो वरदान दिया था वो कब पूरा हुआ, इसका नाम प्रेम, जब जीवन उनको दे दिया तो जैसे वो चाहे वैसे रखे, ये प्रेम। आज भद्रा ने देखा शरद पूर्णिमा का पावन दिन था, शरद ऋतु आ गई है, गर्मी कम हो गई है, ठंडक का प्रवेश हो रहा है, मौसम बहुत सुंदर है, जमुना किनारे पे भगवान मालती के पुष्प खिले हुए भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, एक प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा सुंदर सब जगह दिखाई दे रहा है। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके श्री कृष्ण को गोपियों की याद आती है, एक एक बात को अगर ध्यान से जो है धन है वो गोपियां जिनको श्री कृष्ण याद करते हैं, धन है वो भक्त जिनको ठाकुर याद करता है। अरे परमहंस जी तो सबको तो नहीं याद करते थे, सबको तो नहीं बुलाते थे, लेकिन अगर नरेंद्र नहीं आए तो क्या नरेंद्र को आप सामान्य कोटि में रखते हैं, धन है वो गोपियां जिनको श्री कृष्ण याद करते थे, जिनको श्री कृष्ण बुलाते सबको तो नहीं बुलाते, हम तो कब से रोज दर्शन करते हैं रोज बुलाते रोज प्रार्थना करते हैं लेकिन स्वप्न में भी तो नहीं दिखाई देते, जरूर दिखाई देते होंगे उन लोगों को, मैं सामान्य बात कह रहा हूं। इस शुद्ध पवित्र वातावरण को देख करके श्री कृष्ण को गोपियों की याद आती है, इतने दिन बीत गए इन गोपियों ने अपने से कभी नहीं कहा कि रास लीला कब करेंगे, आज ही होना चाहिए, आज जो पवित्रतम दिन है भगवान कृष्ण मन शक्ति संकल्प कर लिया आज ही करेंगे, फिर क्या किया और रास लीला करना है अकेले से तो होगी नहीं, योग माया उपाश्रिता, योग माया, योग माया के अनेक अर्थ किए। योग माया का अर्थ है श्री राधा रानी, योग माया का अर्थ है बांसुरी, योग माया का अर्थ है लीला शक्ति। ये जब तक नहीं होंगे तब तक राष्ट्रीय प्रारंभ नहीं होगी। रसो वही सहा परमात्मा रस रूप है, लेकिन ध्यान रखना रास रूप अगर श्री कृष्ण को प्रकट करना है तो बिना किशोरी जी के, बिना बांसुरी के, बिना लीला शक्ति के रास रूप में श्री कृष्ण प्रकट नहीं हो सकते। योग माया वास्तविकता बिना किशोर जी की कृपा के, बिना उनके सहयोग के। भगवान कृष्ण ने किशोर जी को याद किया, किशोरी जी इन प्रेमी गोपियों को रासलीला का रस देने का समय आ गया। किशोर जी उपस्थित हो गए, बांसुरी उनके पास ही थी, लीला शक्ति को बुला लिया और तार रात्रि एक समस्या और खड़ी हो गई। लक्ष्मण दास था, तार रात्रि अरे शरद पूर्णिमा की रात्रि तो एक ही रात्रि थी। संस्कृत में तार रात्रि वृक्ष बहुवचनाम प्रयोग नंबर, अनेक रात्रियों की अधिष्ठात्री देवियां खड़ी। आप कहेंगे रात्रि तो एक ही होगी, अनेक रात्रियां, तो एक आदि भौतिक रूप होता है, एक आदि दैविक रूप होता है। क्या दैविक जगत की लीला है, ये दिव्य लीला है। तो पूरे वर्ष की जितने छह महीने की रात्रियां थी, सभी की अधिष्ठात्री देवियां श्री कृष्ण के पास आ गए। आप केवल शरद पूर्णिमा की रात्रि का चुनाव किया है तो हमारा क्या होगा, हमको क्यों चुनाव किया। मान इतनी दिव्य लीला है कि रात्रियां लालायित है कि हमारा चुनाव इस लीला की। तब रात्रि भगवान कृष्ण ने देखा है तो छह महीने की रात्रि असर पड़ी। अधिष्ठात्री देवी के रूप में भगवान कृष्ण ने लीला शक्ति से कहा सबको एक करो। छह महीने की रात्रि की एक रात्रि बनाई गई। इसलिए गौड़ी संप्रदाय के महापुरुषों ने कहा यह महाराष्ट्र लीला छह महीने चली। छह महीने चंद्रमा रुक गया था, तारेगण रुके हुए थे। क्यों? चंद्रमा देखते देखते इतना विस्मित हो गया तो चलना ही भूल गया। ये वो लीला थी, ये वो महाराष्ट्र की लीला। रात्रि बीच सभी रात्रियों को श्री कृष्ण ने वो सौभाग्य दिया, सब रात्रियों को शरद पूर्णिमा की रात्रि में मिलाया और एक रात्रि बना करके फिर जमुना पुल पर खड़े होकर के गोपियों का आह्वान करते हैं। अब आह्वान करने के बाद गोपियों की क्या दशा होगी और क्या लीला होगी, इसकी चर्चा अपने कल करेंगे। आज का समय पूरा हो रहा है, दो मिनट का तो संकीर्तन करें और कल से फिर इस रास लीला का आनंद लेंगे। बड़ी दिव्य लीला है, थोड़ा ठाकुर से प्रेम करके सुनेंगे तो रस ही रस है, इसमें और कुछ है ही नहीं।